संतप्त मानस शांत हों, इनके गुणों के गान में ये वर्धमान महान दिन पिछड़े हमारे ध्यान। अब समय सार परमागम की गाथा नंबर 312 और 313 में गाथा चले, करो 12 और 13 में गाथा कपद्यान से। मोक्षाधिकार में शुरू में ये कहा था कि बंध के ज्ञान से और बंध के विचार से मुक्ति नहीं होती, बंध का अभाव नहीं होता। और वहां ये भी कहा था कि इसलिए हम विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से अंधी हुई है बुद्धि जिनकी, उनको समझाते हैं कि इन विकल्पों को तोड़ो। और आगे लिखा है दुधाकरण के व्यापार में लगाया जाता है, ऐसा कहकर हम जीवों को दुधाकरण के व्यापार में लगाते हैं, माने वेद द्रव्यों को भिन्न भिन्न करना सीखें, भेद विज्ञान जानें। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ था, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो वहीं से जुड़ता है, और यही कारण है कि जैसेनाचार्य इसे मोक्षाधिकार में मानते हैं, वहां से ये बात जुड़ती है कि दुधाचरण के व्यापार के लिए हमारे पास साधन क्या है। तो उन्होंने कहा था कि प्रज्ञा क्षणी, वो तुम्हारे पास जो तीसरी बुद्धि है वो प्रज्ञा क्षेणी से ही तुम उस दुधाकरण के व्यापार में लग सकते हो। यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि प्रज्ञा क्षेणी सम्यक ज्ञान रूप है ना, तो वो तो ज्ञानी धर्मात्मा के ही होगी, और ज्ञानी धर्मात्मा तो सुपरभेद विज्ञान में निपुण होते हैं, उन्हें सुपरभेद विज्ञान करने की जरूरत क्या है। इसलिए वो कहते हैं कि वो जो सम्यक ज्ञान रूप प्रज्ञा क्षेणी है ये बात भी सत्य है, लेकिन उसके पहले जो भेद विज्ञान करना है उसमें भी तुम्हारी ये बुद्धि ही काम करेगी, वो भी एक तरह से प्रज्ञा क्षेणी है। जैसा वो तो व्यवहार से कहा जाता है, निश्चय से नहीं, व्यवहार से निश्चय को छोड़ो तुम, क्योंकि जो भी कार्य होना है आत्मा के कल्याण का वो तो ज्ञान के माध्यम से ही होना है। और उन्होंने कहा ना, उनने ये कब कहा कि तुम्हें सम्यक ज्ञान होगा तब देशना लब्धि को तुम समझोगे, उनने तो ये कहा है कि तुमने ज्ञान का क्षयोपशम होना चाहिए, और वो सैनी पंचेंद्री को जितना होता है उतना होना चाहिए, उसे ज्यादा की उनने बात नहीं कही। और फिर विशुद्धि लब्धि की बात कही, और फिर देशना की बात कही, और देशना लब्धि में सारा ही निर्णय हो जाएगा तुम्हारा, क्या सुपर भेद विज्ञान। अब अकेली अनुभूति की सील रखना बाकी रहेगी, जो प्राय गोकरण लब्धि में जाकर के वो लगेगी, तो वो तुम ये मत समझो ये प्रज्ञा क्षेणी बाद में ही साधन बनेगी। तुम्हें आरंभ से ही इसके माध्यम से ही आत्मा का कल्याण करना है और बाहर का कोई भी क्रियाकांड वृत्तशील संयम तत्याग जिसे अपन कहते हैं उससे काम नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, जानने का काम तो हम ज्ञान से कर लेंगे। फिर तुम बाद में ये कहते हो कि जान करके क्या करना, स्व पर भेद विज्ञान करना और फिर जानकर पर को छोड़ देना और स्व को ग्रहण करना, इसके लिए क्या करना है, क्या साधन है हमारे पास? ये बस साधन साधन साधन, तो साधन के नाम पर भी इतनी इतनी चीजें इकट्ठी करता जाता है कि वो परिग्रह का ढेर इकट्ठा हो जाता है। चक्रवर्ती ने भी अपने सुखी होने के साधन ही तो इकट्ठे किए थे, तो वो कहते कि नहीं नहीं बस वो भी वहां अपना एक प्रज्ञा सिंह और जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध गाथा है कि जिस भांति प्रज्ञा छेन से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेन से ही अरे ग्रहण करो इसे, कि जिस प्रज्ञा छेन से तुमने पर से विभक्त किया बस उसी बुद्धि से तुम्हें ऐसे ग्रहण करना है। ग्रहण करना क्या करें, कैसे ग्रहण करेंगे, इसे पकड़ें क्या करें? जो हाथ से किसी चीज को ग्रहण करता है ना तो ऐसे ही समझता है। तो उन्होंने कहा भैया कुछ ज्यादा चक्कर नहीं है, तुम इसे जानो और ये जानो कि ये मैं हूं, इसे ज्ञान से ग्रहण करना कहते हैं, और ये मानो कि ये मैं हूं, इसे श्रद्धा से ग्रहण करना कहते हैं, और तुम उसे एक्चुअल में ही ग्रहण कर लो, जम जाओ उसमें ही, तो इसे चारित्र से ग्रहण करना कहते हैं। अगर हम प्रज्ञा श्रेणी कहते हैं तो उसमें श्रद्धा ज्ञान और चारित्र अब तीनों चीजें शामिल कर लेना। अब ये बात कही थी और इससे फिर एक कह दिया था कि फिर इसी बात करते करते मालूम क्या बात आई, वो तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और अप्रतिक्रमण विष्कुंभ है और अमृत कुंभ है, वो सारा मामला इस त्याग की प्रक्रिया में ही संपन्न हुआ। और फिर अंत में ये कह दिया कि यह आत्मा पर में तो कुछ करता ही नहीं है और पर आत्मा में कुछ करता ही नहीं है, अतो अकर्ता अब तिष्ठते, यहां तक आ गए थे ना। अब उसके बाद ये कहते हैं इन गाथाओं में कि कलश ने एक बात कह दी थी अंत अंत में, क्या बहुत आश्चर्य है हमें कि इतना सब नक्की हो जाने के बाद भी, ऐसा ज्ञान हो जाने के बाद भी यह आत्मा अपने कर्म को कैसे बांधता है, ये कोई अद्भुत अज्ञान की महिमा है। कलश की अंतिम पंक्ति थी ना, क्या यह अहो अकर्ता आत्म फिर भी बंद हो रहा, यह अपार महिमा जानो अज्ञान भाव की। यह अज्ञान भाव की अपार महिमा है कि आत्मा इस तरह से नक्की हो गया और फिर भी बंद हो रहा है। तो कहते वो अज्ञान भाव कहां बचा रहा, ये समझना किसी का जो वो अज्ञान है ना, वो अधिक अज्ञान उसकी बात नहीं है, ये तो मिथ्यात रूप अज्ञान की बात ही है। तो अब के बाद में हमने ऐसा जीव तो अकर्ता अब सिद्ध हो गया कायम है आगम के आधार पर, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश से, अभी इसके आत्मा अनुभव में थोड़ी आया है। तो उसको जो बंद हो रहा है वो अज्ञान की महिमा जानो। अब इसके बाद ये जो गाथाएं आज अपन ने पढ़ी हैं, इन गाथाओं में क्या कहा गया है कि चेदादुपयदि अर्थम उपजय विनश्चयी, कि यह आत्मा प्रकृति के निमित्त से, पयदी है ना, पयदी अर्थम माने निमित्त से, प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, और पयदी भी चेदर्थम उपजय विनश्चयी, प्रकृति भी आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। एवं बंधो दोनम भी, इस प्रकार दोनों में अन्योन्य प्रत्यया हवे, एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक भाव से उनमें बंध होता है। अपनो पैडीये संसारो तेण जायदे, और इस प्रकार से जीव को संसार की उत्पत्ति होती है, इन गाथाओं में कहा गया है। अब ये प्रकृति के निमित्त से जो ये बशब्द है, इसमें एक तो ये समझना कि ज्ञानावरणादि आठ कर्मों को ये प्रकृति शब्द से क्यों कह रहे हैं। हम अभी बंध की अपेक्षा बात करें तो भी प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव चार कहना चाहिए, अकेले प्रकृति को क्यों पकड़ा। कि जीव प्रकृति के निमित्त से प्रणमित होता है और प्रकृति भी जीव के निमित्त से प्रणमित होती है, ऐसी लिखी ना। प्रकृति शब्द क्या है असलियत में? आपने देखा होगा कुंदकुंदाचार्य की गाथाओं में तो उनके दिमाग में एक तरफ सांख्य और एक तरफ बौद्ध, ये दो बहुत सवार रहते हैं, है ना? तो वो सांख्य जो है वो मालूम है 25 तत्व मानता है, सुना कभी? और उसमें मूल दो तत्व हैं, जैसे अपने मूल दो तत्व हैं ना, जीव और अजीव, ऐसे उनके मूल तत्व हैं एक पुरुष और एक प्रकृति। और पुरुष माने आत्मा और प्रकृति दूसरी है, तो उसके 24 भेद होते हैं। तो वो क्या कहता है कि पुरुष माने भगवान, आत्मा तो बिल्कुल अकर्ता है, वो ऐसा मानता है, कौन सांग, और जो कुछ करती है वो सब प्रकृति करती है। और प्रकृति का फिर उसमें भी है कि इस तरह से प्रकृति से देख होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, ऐसा पूरा वर्णन शास्त्रों में आता है। ऐसा जैन दर्शन में भी कुछ लोगों की मान्यता है, जिसकी चर्चा आगे की गाथाओं में आएगी, कि प्रकृति ही सुलाती है, प्रकृति ही जगाती है, प्रकृति ही खाने को करती है, प्रकृति ही विषय कषाय में प्रेरित करती है। आत्मा यदि सोता है तो वह निद्रा कर्म के उदय से सोता है, जागता है तो निद्रा कर्म के संयोजन से जागता है। ऐसे सारे काम जितना इस आत्मा के दिखाई देते हैं, ये सब में वो आत्मा तो अकर्ता है, वो सब प्रकृति ही कराती है। तो वो जैनी भी लोग कहते हैं बस कर्म की प्रकृतियों के उदय से ये सब होता है, आत्मा तो अकर्ता है, हम जीवो अकर्ता तिष्ठते कह दिया ना। तो कोई इस आत्मा को सांख्य जैसा अकर्ता ना समझ ले, और एक कर्म के उदय को माने प्रकृति जैसा सांख्य मानता है, प्रकृति करता है, ऐसा ही कर्म के उदय से ही सब काम होते हैं, ऐसा ना मान ले। वो सब क्षमता आ जाती है उससे कि तुम सो गए भैया, तुम्हें प्रतिदिन सूर्य तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? कहते निद्रा दस में बनी कर्म का उदय है, शर्म आए तो निद्रा दस में बनी कर्म को आएंगे, हमें क्या को आती है? कि तुम बहुत गुस्सा हो रहे थे, क्रोध कर्म का उदय था, उससे बोलो हमसे क्या कहते हो? कि तुम बहुत लोभिया हो, कि क्या करें, लोभ कर्म का उदय है, उससे हो जाता है। यानी जो भी आए वो उसका एक कर्म है, जो भी विकार हमें उत्पन्न होता है आत्मा में, उसमें किसी कर्म का उदय निमित्त होता है। उस सांख्यों में भी प्रकृति को निमित्त महानिमित्त ही कहते हैं, जैसे ईश्वरवादी जो ईश्वर को महानिमित्त कहते हैं ना। तो कुंदकुंदाचार्य कहते हैं ये सांख्य जैसा हो गया तू। अब कोई ऐसे है कि नहीं नहीं वो आत्मा ही सब कुछ करता है, बेचारा कर्म कर, कर्म बेचारे कौन, भूल तेरी अधिकाई, और अग्नि सहे घन खाओ लोहे की संगति पाई, तो ये सब पुरुष आत्मा पर ही लगा देते हैं पूरा सब। तो वो यहां बता रहे कि देखो आत्मा यदि राग रूप परिणमित होता है, जिसे हम बंध कहते हैं, तो उसका कर्ता आत्मा ही है और निमित्त प्रकृति है। और कर्म में जो ज्ञानावरणादि रूप कारमान वर्णा में जो ज्ञानावरणादि रूप प्रणमन हुआ है, वो उसमें उपादान कर्म ही है, और आत्मा का मुहिर आदेश का परिणाम उसमें निमित्त मात्र है। अब कहते हैं हमने तो कर्ता कर्म का निषेध किया और ये उपादानुपादेय भाव से और ये निमित्त नैमित्तिक भाव से फिर वो कर्ता कर्म की स्थापना वहां कर लेता है। वो अगर हो रहा ना तो कहते भाई निमित्त जीव ने कर्म के उदय का निमित्त पाकर ये जीव स्वयं परिणमित हुआ है। परिणमन का कर्ता जीव ही है, कर्म नहीं है। कर्म तो निमित्त मात्र है, वो ये कहते हैं, पर हम उस निमित्त उसको ही कर्ता मान लेते हैं बिल्कुल। और ऐसे ही ज्ञाना वर्णादि रूप कर्म परिणमित हुआ, वो कर्माएं वर्णाई हुई परिणमित, उसने जीव ने उसे कुछ नहीं किया कि जीव का राग हुआ ना तब हुई ना, कि जीव का राग तो मात्र निमित्त है। कहना चाहते हैं बार बार वे कि निमित्त कर्ता नहीं होता, निमित्त बस निमित्त निमित्त होता है, तो निमित्त की दृष्टि से कर्ता कर्म भाव घटित करता है। और कहते जनमानी में भी व्यवहार से ऐसा घटित किया है ना, जनमानी में भी घटित किया है। क्यों? क्योंकि वो अभिनव भाव बता देते हैं, वो न्याय शास्त्र का है ना अभिनव भाव, कि देखो वो आत्मा में राग हुए बिना कर्म बनता ही नहीं है आज तक, अभिनव भाव उसके बिना वो नहीं होता, उसका नाम अभिनव भाव। और जब भी राग हुआ है तो गारंटी से कर्म का उदय निमित्त है ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्म का उदय निमित्त नहीं हो तो राग हो जाए। तो दोनों तरफ से अन्वय विद्रेक घटित करके और वो उन्हें कर्ता कर्म भाव सिद्ध करता है। तो यहां वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो अज्ञान की महिमा जानो, तो अज्ञान की महिमा क्या है कि ये जीव अपने अज्ञान भाव से कर्मों का उदय को निमित्त बनाकर निमित्त पूर्वक स्वयं राग रूप प्रणमित होता है। अब वो बंध दो प्रकार का है, एक भाव बंध एक निर्बंध। हम दोनों को एक समझते हैं तो फिर कहते हैं कि दोनों ने मिलकर किया, ये समझ सकते। कोई कहता है कि आत्मा ने किया, कोई कहता है कर्म ने किया बंध, कोई कहता दोनों ने मिलकर किया, हमारा यही उपाय है फिर अंत में। अब वस्तु स्थिति बिल्कुल अलग है। देखो एक घटना का उदाहरण देके मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा, इन गाथाओं का भाव स्पष्ट होगा। बहुत पुरानी बात है, करीब 40 साल पुरानी बात होगी, जब मैं बड़े मंदिर में रोजाना प्रवचन करने की सुबह जाता था और आदर्श नगर वालों से बहुत घनिष्ठ संबंध था, वहां भी बहुत प्रवचन करने जाता था और वो भी हर एक काम में आते थे। आज भी यहां बहुत लोग बैठे होंगे, अब वो पुराने लोग तो सब धीरे धीरे चले गए क्या, अब नए बहुत आए उन्हें ज्यादा मैं पहचानता नहीं हूं। तो दो भाई लड़ते लड़ते वहां से आदर्श नगर से यहां आए, और ये अपना चला नहीं कि इसके दरवाजे पर यहां बैठे थे इसी तरह। जब हम आए वहां से बड़े मंदिर से, हम गोदका जी लौट कर तो वहां बैठे थे, उन्होंने कहा पंडित जी हमें झगड़ा हो गया है और आपसे हम फैसला कराने आए। क्या मैं ये बोलो क्या झगड़ा हुआ है कि ये खाना कौन खाता है, शरीर के आत्मा, ये कहता है आत्मा खाता, मैं कहता शरीर खाता। ये कहता है कि यदि शरीर खाता है तो मुर्दे को खिला दो, अब मैं इससे कहता हूं यदि आत्मा खाता है तो शरीर के बिना आत्मा को खिला दो। वो हमारा कोई फैसला नहीं हुआ तो आप हमें ये बताओ क्या करिए, हमारा फैसला आप कर दो। ये सच्ची घटना है बिल्कुल। अभी वो मेरे ख्याल से वे दोनों ही आदमी आदर्श नगर में रहे नहीं है, तो मैंने उनसे कहा कि अभी खाना खाने का टाइम है और घर पर हमारे भोजन बन गया है तो आप चलो पहले तो अपन प्रयोग करके देखते हैं कि कौन खाता है, फिर अपन इसका फैसला करेंगे। यानी आप तो मजाक उड़ाते, हम तो साहब हमारा तो इतना झगड़ा हो गया हम आए। अच्छा भाई ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हो, खाना माने क्या पहले ये नक्की करो। मैंने कहा जिस खाने को तुम एक समझ रहे हो वो एक नहीं है, वो दो काम है। एक जो थाली का माल पेट में जाना, एक एक कार्य है, वो एक एक कार्य है कि आत्मा में खाने का भाव होना। अब दो कार्य हैं जी, अब दोनों को मिलके हम एक मान लिया, अब फिर झगड़ा होता है कि एक करता है क्या वो। अब वो पुद्गल का जो यहां से ट्रांसफर होता है उसका कर्ता पुद्गल है, और आत्मा में जो खाने का भाव हुआ उसका कर्ता आत्मा है, इतना सब झगड़ा में बन जाता है। हमने दो एक मान लिया और फिर दो कर्ता, जब दो कार्य को एक मानोगे तो दो कर्ता तो खड़े दिखेंगे ही ना, क्योंकि एक का वो करता है एक का वो करता है, मिला हुए को कार्य कहोगे तो दोनों कर्ता आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। जब मैं ये समझा रहा था कि भैया ये मुर्दा नहीं खाता है, अकेला शरीर नहीं खाता है, तो वो जो पक्ष वाला था ना आत्मा, तो वो बोला कि नहीं खाता है तो ये इतना भोजन कहां चला जाता है, लाखों मन अनाज और अनाज की इतनी कमी पड़ रही है, वो मालूम अब कितनी पुरानी बात है, जब जगजीवन राम खाद्य मंत्री हुआ करते थे और वो यहां आए थे जयपुर में, और जब वो उपवास वाले होते हैं ना अपने यहां जयपुर में, तो उपवास वालों का सम्मान होता है, तो जो हमें भी बुलाया था उन्हें भी बुलाया था, जब कोई बड़े नेता आते हैं तो हमको जब से ही बुलाते हैं लोग, तो ये सब लोग कह रहे थे अपने भाषण में जगजीवन राम के स्वागत में कि आप खाद्य मंत्री हैं, हमारी इन बहनों ने और पुरुषों ने उपवास करके इतना अनाज बचाया है, तो आपकी खाद्य समस्या का हल किया है, इसलिए आपको इनका उपकार मानना चाहिए। वो मुस्कुराते हुए बड़े शांति से बैठे रहे, तो जब उनमें अंत में उनका भाषण हुआ तो उनने क्या कहा वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, बहुत मार्मिक बात है। उनने कहा कि लोगों को भूखों मारने के लिए हम अनाज इकट्ठा नहीं करना चाहते, क्या आप 10-10 दिन खाना नहीं खाओ, हमारी समस्या तो ये है कि एक टाइम भी कोई आदमी भूखा ना सोए। खाद्य मंत्री की ड्यूटी क्या है कि देश में एक आदमी एक दिन भी भूखा ना सोए। इसने कितना अनाज बताया होगा, 2-4 किलो बनिया खाते ही कितना सा है, एक रोटी मुश्किल से खाते हैं है? अरे तुम्हारे हम कह एक अनाज नहीं बचवाना, हमें भूखो नहीं मारना, तुम तो 2 टाइम खाओ आराम से, हमें तो वो जो तुमने लाखों बोरियां छिपा के रखी हैं हमें तो वो निकलवाने आए, हमें तो वो चाहिए कि जिससे कोई आदमी भूखा ना सोए। तुम सब व्यापारी हो ना, और तुम समझ हम सब दवा लेते हो, भरी सभा में ये कहा था रामलीला मैदान में, अभी कोई आदमी होंगे उस वक्त के तो उन्हें वे भी मेरी गवाह हो सकते हैं। तो वो जो कह रहे थे कि इतना भोजन कहां चला जाता है, तो मैंने उन भाइयों से कहा कि यदि अनाज कहां चला जाता है ये तुम्हारी समस्या हो तो जगजीवन राम से पूछो, मैं उसका जिम्मेवार नहीं, और आत्मा क्या करता है यदि तुम्हारी समस्या ये हो तो फिर मेरे से बात करो, मैं आत्मा वाला हूं अनाज वाला नहीं। मेरी तुम आए हो वहां से आदर्श नगर से, तुम्हारी समस्या ये है कि आत्मा क्या करता है ये है कि अनाज कहां जाता है ये है, तुम आत्मा थी हो ना, सिविल लगेगा हमारे यहां 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आप सब लोग पधारना, कैसा हम आएंगे तो, लेकिन भोजन तुम ये क्यों नहीं पूछते हो कि पढ़ाई की व्यवस्था क्या होगी, कौन कौन पढ़ाएगा, तुम शिविर में अध्ययन करने आने वाले हो कि भोजन करने, तुम भोजन का विकल्प क्यों आया, तुम भोजनार्थी हो कि अभ्यनार्थी बोलो। अरे भाई जब हम तुम्हें बुलाएंगे तो भोजन की व्यवस्था भी करेंगे ही, ऐसा थोड़ी है कि भूखा रखेंगे, लेकिन तुम्हें यदि भोजनार्थी हो तो तुम्हें भोजन का विकल्प आया, और तुम अध्ययनार्थी हो तो तुम्हें अध्ययन का विकल्प आना चाहिए, हम आत्मार्थी हैं तो हमें आत्मा क्या करता है ये विकल्प आना चाहिए, भोजन कहां जाता है ये विकल्प नहीं आना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए मैं कभी कभी कहता हूं कि पत्नियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सिकंदर जी, अब मैं जानता तो नहीं हूं लेकिन उदाहरण देके समझाता हूं कि एक तो बे कि जब पति शाम को देर से आए खाना का समय निकाल के, तो एक तो वे कहती है कि क्यों क्या हो गया, कहां रह गए, शाम का खाना तो खा लिया था ना कहीं, भूखे तो नहीं हो, नहीं मैं कुछ फल बना दूं, दूध बना दूं। और दूसरी बे कि जो कहती है तुम समय पर नहीं आ सकते थे, अब इस खाना का मैं क्या करूं। क्यों? तो एक तो है वो पति की पत्नी और दूसरी है भोजन की पत्नी, क्योंकि एक को चिंता हुई पति की कि कहीं भूखा नहीं रह गया हो, क्यों, और दूसरे को चिंता हुई कि भोजन का क्या होगा। इस देश में जहां लाखों लोग एक टाइम बिना खाना के सोते हो, उसमें ये कोई समस्या है कि भोजन का क्या होगा, क्यों, किसकी चिंता होना चाहिए, बोलिए, पत्नी को किसकी चिंता होना चाहिए, पति की के भोजन की। अब अपना अपना समझ लेना। तुम क्या करती हो, तुम्हारे घर की तुम जाना, मुझे पता नहीं। लेकिन दो प्रकार की पत्नियां होती हैं अवश्य। तो ऐसे ही आत्मार्थी को आत्मा की बात करनी चाहिए ना, भोजन की बात नहीं करनी चाहिए ना। अरे खाने का भाव आत्मा ने किया और भोजन या थाली का माल पेट में गया, इसका कर्ता भोजन है, कहना है ना, आत्मा नहीं है। अब ऐसा यहां है कि ज्ञानावरणादि कर्म का बंध हुआ, उसका कर्ता ज्ञान कारमान वर्णा है ना, और आत्मा में रागादिक भाव हुए, उसका कर्ता आत्मा है। ये तो हम बता ही रहे, क्योंकि ये प्रकरण वही है, कौन द्रव्यगुण पर्याय को शामिल करके विकारी पर्याय भी आत्मा नहीं शामिल करी थी ना, तीन दिन से पांच दिन छह दिन से अपने बात कह रहे कि नहीं कह रहे। तो इतनी सी समस्या है, बस यही बता रहे कि प्रकृति के निमित्त से आत्मा रागादि रूप परिणमित होता है और आत्मा के रागादि के निमित्त पाकर ज्ञानावरणा कर्मा वर्णा ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित होती है। और ए इसको बंध कहते हैं, उसको द्रव्य बंध कहते हैं, इसको भाव बंध कहते हैं। अब ये परस्पर निमित्त निमित्त भाव है, इनमें कर्ता कर्म भाव नहीं है। तो कर्ता कर्म भाव नहीं है तो आत्मा कर्ता नहीं है उसका, और रागादिक का कर्ता तो हम कही रहे हैं। अब सांख्य व्यालय जैसे लोग कि सारे विकार को कर्म के नाम पे मड़कर और अपनी रंजमाती जिम्मेवारी स्वीकार नहीं करें, तो उनके लिए ये बात सरकार से कि नहीं तू करता है। और फिर कोई आदमी के क्या करें, मैं तो किया ही है, मैं तो किया ही है, मैं तो किया ही है, तो आगे ये भी बताएंगे कि तूने क्या किया, वो तो अनादि से नक्की था, वो होना था वो हुआ, क्या पर्याय का कर्ता पर्याय तो नहीं है, ऐसा ये समझाएंगे। ये दोनों अपेक्षाएं यहां पर हैं, है ना। अब देखो इसके आत्मख्याति टीका है, चलो पढ़ो गद्य पढ़ो आत्मख्याति, मैं पढ़ नहीं सकता हूं भाई, इसलिए
अपने और सब के निश्चित लक्षणों का ध्यान रखकर होते थे, स्व और सब के एकत्व का अभ्यास करते थे, करता बनता हुआ यह आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्तर का विनाश को प्राप्त होता है और प्रकृति भी आत्मा के निमित्त से उत्तर का विनाश को प्राप्त होती है। इस प्रकार आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म भाव का अभाव होने पर भी परस्पर निमित्त निमित्त भाव से दोनों के मन देता रहता है, इससे संसार और किसी से आत्मा प्रकृति के कर्ता कर्म का भाव पाता है।
हाँ जयसेन का भी पढ़ लो,
आचार्य जयसेन पात्र रुचि है इन आत्माओं का करते हुए इस बात पर विशेष उम्मीद करते हैं कि
उसे जरूरत समय सार का पढ़ो तात्पर्य है किताब समय सार नहीं है किसी के हाथ में इसमें नहीं मिलेगा वो पढ़ो भाई तात्पर्य है देखो बस इतनी जिदाई की ओट में पहाड़ है वो कह रहे कि इतना बड़ा संसार अनादिकाल से आज तक अब उसमें भूल कितनी थी कि आत्मा ने कभी कर्मों में कुछ किया नहीं और कर्मों ने आत्मा में कुछ नहीं किया क्योंकि वो वज्र की दीवार अपन ने खड़ी की थी ना दो द्रव्यों के बीच में क्या कहां की खड़ी की थी जीवो ही तावत कृमि ने मात्र परिणाम ही ऋतुपद मानो जीवा एव नो अजीवा अजीवो की कृमि ने मात्र परिणाम ही ऋतुपद मानो अजीवा एव नो जीवा माने इसमें जीव अजीव ही है अजीव नहीं अजीव अजीव ही है जीव नहीं इसमें चारों का निषेध हो गया एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभी बंद का कोई कारण ही नहीं रह जाता है इसीलिए तो वो समय सार में लिखा है कि बंद कहा ए व्यक्ति तेन विसंवादनी होई तो ये बंद की चर्चा में ही झगड़ा खड़ा किया है अब बंद होता ही नहीं है बंद न मोक्ष करे ही भगवान आत्मा को लिखा है ठीक है आप कैसे कैसे नहीं हो जी सारा तो बंद दिख रहा है सब बंदे बनाए दिख रहे हैं भाई अनंत दुख भोग रहे हैं भाई आगे अनादिकाल से भोग रहे हैं क्यों कि नहीं करे कैसे भोग रहे तो कहते हैं इतने ये अज्ञान भाव किया कौन सा कि नहीं करता है और अपने को करता माने और कर्म भी नहीं करता है आत्मा में और आत्मा कर्म को आत्मा का करता माने तो ये जो मानने वाला इतना सा है अज्ञान तो इस अज्ञान का इतना बड़ा परिणाम है खतरनाक कि अनादिकाल से आज तक इतना दुख इसको हो रहा है वो अपने कहे कहां से जोड़ा उन्होंने कहा था दुधाकरण के व्यापार में लगाया जाता है अब वो दुधाकरण करते 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 बिल्कुल उन्होंने अलग कर दिया था अब फिर भी कहते हैं कि ये देखो इतना इतना बंद हो रहा है तो उन्होंने कह दी वो अज्ञान की महिमा है अब अज्ञान की महिमा है तो यहां अज्ञान है ना तो ये किसकी बात हुई ज्ञानी की अज्ञानी की पर अज्ञानी के जो बंध है उस बंध की बात है ये जो समय सार की जो कथन शैली है जो सुन्न ऋषियों को जो बंध होता है उसको तो वो बंध ही नहीं गिनते जरा ऐसा समझो चार है ना अनंतान बंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संयोजन एक कथा है मिथ्या तो अलग है ही अभी मैं ये समझाने के लिए बोलता हूं कि इन चारों कषायों का कार्य क्या है। तो अनंतानबंदी का कार्य क्या है, अप्रत्याखान हम क्या कहते, खूब जोर जोर से गुस्सा आना और मारना पीट करना, ये अनंतानबंदी का काम है। और थोड़ा गुस्सा मंदा पड़ जाना वो अप्रत्याखान का है, और एकदम ठंडा पड़ जाना, क्यों कि लोग पत्थर भी मारते रहे मुनिराजों को तो गुस्सा नहीं आना, क्यों वो इसका है और फिर वो संतुलन का, ऐसा नहीं है। संतुलन का कार्य अलग है, क्या यथाखात चारित्र नहीं होने देना। प्रत्याख्याना वर्ण का कार्य अलग है कि महाविद रूप संयम नहीं होने देना, मन सर्वे अनुष्ठान के ऊपर लायक जो शुद्ध परिणति है वो नहीं होने देना। तो अप्रत्याख्याना वर्ण का कार्य है कि देशविद रूप भी, देशविद माने कोई स्वभाव रूप नहीं, दो कषाय के अभाव रूप जो परिणति है वो नहीं होने देना। अनंतानबंदी का काम क्या है, रंत मात्र भी करना है ना, और वो भेद विज्ञान भी नहीं होने देना, समझ लीजिए। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे सारे काम अनंतानुबंधी है तो सब अनंतानुबंधी, जितने कसाय से बुरा अनंतानुबंधी हुए वो चार शांत बैठे हैं, चारों हैं हमारे, तो चारों अपना अपना काम कर रही हैं। ये सारे काम जानते नहीं, अनंतानबंदी से नहीं हो रहा हमारे तुम्हारे के किसी के भी, समझे ना। यदि हमको महासकल संयम नहीं हो रहा है तो वो उसका अप्रत्याखाना वर्ण कर्म का उदय है, देश संयम नहीं हो रहा है तो उसका अलग कारण है, ऐसा क्या चारित्र नहीं हो रहा है तो संतुलन कषाय का उदय है। तो सबका अपना अपना कार्य है, तो अनंतानबंदी जाएगी तो अनंतानबंदी का काम रुक जाएगा, और बाकी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का तो होगा। अब फिर वही समस्या आ जाती है जो मैंने कल कही थी कि वो मैं लिखना चाहता था, अब वो अप्रत्याख्याना वर्ण का क्या कार्य है, क्यों छखंड की विभूति जोड़ना किसका कार्य, काय का कार्य, बोलो सोच रहे सर, आपके लोगों की समझ में आ रही बात क्यों नहीं, ज्यादा कठिन पड़ रही है, क्यों सुरेश चंद जी, ये चक्रवर्ती की विभूति जोड़ना का जो भाव आपको है, दिनना रात कमाने का, हरेक को, हरेक आगे बाजार में बैठा है तो चक्रवर्ती बनने के लिए बैठा है, चक्रवर्ती माने अधिक से अधिक परिचय जोड़ने के लिए बैठा है। मैं बम्बई जाता हूं तो बम्बई वालों से कहता हूं कि आप अपना गांव छोड़ के आए हो तो यहां अरबपति बनने के लिए आए हो, टाटा बिरला जैसे ही बनने के लिए आए हो, एक दो भाई दो की पार्टी पर बैठकर जिंदगी भर ये करने के लिए नहीं आए हो, नहीं बन पाए वो अलग बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये इतना परिग्रह जोड़ने का भाव ये कौन सी कसा है, फटाफट अनंतानबंदी, तो अनंतानबंदी तो नहीं थी ना भरत चक्रवर्ती के, फिर कैसे जुड़ गई, कैसे जोड़ा उनने, और जान तो भरत चक्रवर्ती बेचारा बहुत बदनाम हो गया, शांतिनाथ चक्रवर्ती बोलो ना, कुंतनाथ बोलो ना, अरानाथ बोलो ना, अरे अजय प्रत्यक्ष अनुरणकार का कसाय का काम है। अब मिथ्या तो गया हो अनंतानबंदी गई, अब आपको कहता हमें ये दिखना चाहिए कुछ कैसा है, अब ये दूसरे देशों के दुकान पर बैठा है, ये इतना धंधा कर रहा है, अब ऐसा लगता है ये पंडित हमको धंधा करने का पोषण कर रहा है, तो फिर हमारा दूसरा भी तो सहाय सम्मान दृष्टि है ना, जो सरदार सिद्धि का आनंद, जो अपनी जिंदगी में एक ना परिग्रह उपलब्ध है उसमें एक कौड़ी भी बढ़ाता नहीं है, अब ये भी अप्रत्याख्याना बन जाता है, तो इतनी मारकार करते हैं, पीटते भी वो पीटते हैं, तो वो भी वहां हो रहा है नरक में साहिब में। अप्रत्याख्याना बन का कार्य क्या क्या है ये मैं बताना चाहता था उसमें, कौन सी जो किताब लिखता, अब मैं बता रहा हूं, जो होगा बुद्धिमान समझ जाएगा और लिख लेगा, क्या समझ में आया, हम सोच नहीं सकते हैं कि जो अनंतानबंदी का कार्य नहीं है, हम चाहते हैं अनंतानबंदी का कार्य होता तो अनंतानबंदी के चले जाने पर ये चला जाना चाहिए था ना, लेकिन हम देखते हैं कि नहीं जाता है, सरवा से जी, अरे वो इसकी वजह से नहीं गया, वो तो उस क्षेत्र का उसका हिसाब ऐसा है, उस क्षेत्र में जो जाएगा वो ऐसा ही होगा। वो नोमेंग्री एक टक्का लगाओ ना, वहां तो मिथ्या दृष्टि जाता है ना, उसके भी सीमित परिग्रह है और वो भी उसके बाद एक पैसा ज्यादा नहीं जोड़ता है। आपकी समझ में आएगी कि नहीं? वो तो अनंतानंद जी मौजूद है उसके, ये अनंतानंद जी का कार्य थोड़ी है, जिसके जुड़ रहा है वो अप्रत्याखाना का काम है। ऐसे प्रत्याखाना हरेक का हमको कार्य अलग अलग समझ में आना चाहिए। उसको उदाहरण से हम ऐसा समझ सकते हैं कि इस हॉल में इतने बल्ब जल रहे हैं, ये दो बुझा दो तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्यों 100 दीपक रखे हैं यहां पर, एक दीपक मैं उठा लेता हूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? कैसी बात करते हो, 1/100 हिस्सा उजेला कम हो जाएगा, होगा क्या नहीं होगा? क्यों उस दीपक से जो उजेला था वो उस दीपक के साथ जाएगा, जो लट्टू बुझेगा उस लट्टू से जो उजेला है वो उस लट्टू के साथ चला जाएगा। अब तुम्हें नहीं दिखता है तो हम क्या करें? कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, क्यों? जब तक तुम्हें ये रास्ता दिखता है ना, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आता कि हमारी आंखों में कोई खराबी है। दादा सच्ची घटना बताता हूं कि मैं अशोक नगर में कॉलेज पढ़ाने जाता था ना स्कूल में, तो एक अनाज का फट्टा लगाता था, फट्टा समझते, वो अनाज आता 2 किलो ले लिया, 2 किलो बेच दिया, ऐसा एक दुकान ऐसी ढेर लगा करके ऐसा लगाता था, फट्टा लगाना बोलते थे, तो ये फट्टा लगाता था देने के बच्चा, तो मेरे चश्मा लगता था, अब वो मेरे से रोजीना व्यंग करता, नहीं उमाल क्या है अभी चश्मा लग गया, मतलब ये है अंधे हो गए, यानी मैं 25-30 वर्ष की उम्र में अंधा हो गया हूं और वो अभी बिल्कुल बिना चश्मा के सब काम करता है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। कभी 10-20 जगह मैंने सुन दिया, तो एक दफे मैं खड़ा हुआ, ऐसा इधर आ कि तुम्हें चश्मा नहीं लगा और मुझे चश्मा लग गया, इसलिए मैं अंधा हूं और तुम बहुत पहलवान हो। अरे तुम्हें जब तक ये दंडी दिखती है और ये शेर 1 किलो दिखता है, तब तक तुम्हें चश्मा की जरूरत नहीं है, तुम्हें पढ़ना लिखना थोड़ी है, तुम्हें पता है, तुमने जांच कराई? अरे मुझे जो नंबर है तुम जांच कराओगे उसे दूना नंबर तुम्हें निकलेगा अभी, लेकिन तुम्हें जब तक ये गलियां दिखती हैं ना, तब तक तुम्हें कोई समझ में ही नहीं आता है कि हम अंधे हैं। ऐसे ये सारे जगत की हालत है कि वो दूसरों को अंधा समझ रहा है। अभी हमको इतना ही पता नहीं है कि किस कसाय का क्या कार्य है। इसी के आधार पर एक बात चली थी, क्या कि उसने क्या है, जिस कसाय का जो कार्य है वो कसाय वो चली जाएगी तो वो कार्य हो जाएगा। अब अनंतानंद जी का कसाय का कार्य तो आत्मा की अरुचि है, तो अनंतानंद जी का तीव्रदय होगा तो आत्मा की रुचि नहीं होगी है। और प्रत्याखाना बन का कार्य वित्त वगैरह को रोकना है, और प्रत्याखाना बन का कार्य महावृत को रोकना है, तो किसी आदमी की अनंतानंद जी नहीं गई और अप्रत्याखाना बन चली गई तो अनुवृत्ति हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि रहेगा, अनुवृत्ति हो जाएगा। है पता किसी को? शांति जी ने हाँ की है, मैंने पता है। अब अन्ना जी यहां है नहीं, वहां बैठे सुन रहे होंगे, और उसका भूत चला गया क्या? प्रत्याखाना बन कसाय चली गई, अनंतानंद जी नहीं गई, अप्रत्याखाना बन भी नहीं गई, वो मुड़ी हो जाएगा। ऐसे दृढ़लिंगी मुनि हो जाते हैं, तो दृढ़लिंगी मुनि के अब प्रत्याखाना मन चले गए। मैंने कहा भैया ये ऐसा नहीं है, नहीं कैसा नहीं है, जाना नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही थोड़ी हो गया, हमको हो गया है, हमको जो वृत्त हो गए हैं भले ही समाधान नहीं हो तो वो कैसा चली गई, अब जे जाएगी तो जे हो जाए, मैं थक जाएगा तो समाधान हो जाएगा। जी सुनिए, आपने कभी ऐसी चर्चा अपने मुंह छू में मैंने बहुत स्ट्रांगली रोका, ये नहीं चलेगा, यहां नहीं चलेगा कम से कम। अरे भाई ऐसा नहीं है, क्रम से ही जाती है, पहले अनंतान मंदिर जाएगी, फिर अप्रत्याखाना बन जाएगी, फिर प्रत्याखाना बन जाएगी, फिर संजुलन जाएगी। तो उनमें क्या है कि पहले योग को ठीक कर लेंगे, योगा तो चौदह अनुष्ठान पहले हो जाएगा, योग केवली पहले हो जाएंगे, फिर बाद में कषाय कम करेंगे तो बारह अनुष्ठान फिर कषाय बाद में हो जाएगा, कर्णवृत महावृत बाद में ले लेंगे, हम वहीं से शुरू करते हैं ना योगा से। अरे कषाय कम मत कर लो, कषाय तो इतनी करते हैं, अपने धर्म में धर्मात्मा बने फिरते हैं, कषाय तो इतनी करते। अरे कषाय कहां जाती है तुझे होश है, कितनी कषाय कहां जाती है तुझे पता है, है? भाई पे चक्र चला दिया था, इतनी कषाय थी और अनंतानंद जी कषाय नहीं थी, बोल क्या करना है ना, आगम की बात है ना, मेरे घर की बात थोड़ी है, क्यों नहीं मेरे घर बाहुबली चक्र चला दिया था तो कहते तुम्हें पता नहीं है, क्या पता है बताओ, कि परिवार के लोगों पे देवोपनीत हथियार चलते नहीं है। अच्छा ये कारण था, तो परिवार के नहीं होते और हम होते तो हम तो मर ही जाते। अरे भाई मैं आपसे पूछता हूं कि तुम्हें पता है, कि सब बहनों को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, अकेले भरत चक्रवर्ती को पता नहीं होगा, अरे भरत चक्रवर्ती को पता था तो चलाया क्यों है, क्योंकि वो मरेगा तो है ही नहीं, तो ये सोच के चलाया था कि नहीं मरेगा। अरे ऐसा पता होने पर भी जब गुस्सा आता है तो वो पता ना मालूम कहां चला जाता है, ऐसे ज्ञान होने पर भी ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है लोक में भी, ख्याल में आई ना, पता चलने पर भी ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। तो अभी हमें एक किस कसाय का कौन काम है कैसे जाएगा, तो पहले मिथ्याप्त जाता है, फिर अवृत्ति जाती है, फिर प्रमाद जाता है, फिर कसाय जाती है, फिर वो जाता है योग होता है, मतलब मालूम चौथे गुण स्थान में मिथ्याप्त जाता है, अनंतानंदी कसाय जाती है, पांच में अवृत्ति देश अवृत्ति जाती है, फिर छठ में ऊपर सकल अवृत्ति होती है तो वो अवृत्ति जाती है, फिर वो अप्रमत्त गुण स्थान में प्रमाद जाता है, फिर वो दसवें गुण स्थान के अंत में बारहवें गुण स्थान में कषाय जाती है, और फिर तेरहवें में योग जाता है। अब इसी क्रम से तेरे गुण स्थान बढ़ेंगे ना, इसी क्रम से होंगे। वो क्या कहता है, पहले प्रैक्टिस तो कर लो ना, काय की वो शुक्ल ध्यान की प्रैक्टिस करता है, शुक्ल ध्यान पंचम काल में होता ही नहीं है, शास्त्र में ऐसा लिखा है, हैं? अब वो कर रहा है एकदम, आर तो रौद्र ध्यान तो त्यागने योग्य है, शुक्ल ध्यान होता नहीं है, क्योंकि वो जिस साधना के साथ जिस भाव से होता है वो पंचम काल में होता नहीं है। अब चार धर्म ही ध्यान ले गए, तो चार धर्म ध्यानों का स्वरूप समझ लो, तो वो सब हमें बाहर से स्वाध्याय रूप दिखते हैं, आचारंग क्या नाम, आज्ञा विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, उपाय विचय, ये जानते क्या है, ये आज्ञा विचय मैंने भगवान की आज्ञा क्या है, क्या है भगवान की आज्ञा, कि कल से तुम समय पर आया करे प्रवचन में, नहीं ये आज्ञा है कि आलू में अनंत जीव है ऐसे नहीं खाना, माने जिन चीजों को हम अपनी आंख से देख के डिसीजन नहीं कर सकते हैं कि कौन खाद्य है कौन अखाद्य है, वो भगवान के ज्ञान में आया है, उनने बता दी, उनकी आज्ञा सिर माथे, उसमें ये बहस नहीं करना, उनने बता दी कि मर्यादा का दही हो तो वो भक्ष है, मर्यादा का बोल रहा हूं मैं, और आलू अभक्ष है पालक अभक्ष है उसमें अनंत जीव होते हैं, बस खत्म, हमें मान्य है कि नहीं नहीं ये तो पिंड ही है और वो वैसा है और उसमें तो एक आज तक जी हमने देखे प्रयोग करके देख लिया, वहां तो हमें कोई जीव नहीं दिखाई दिए ही नहीं, कि भैया इसमें आज्ञा व्यतय है, इसका विचार करना, इसका नाम आज्ञा व्यतय धर्म ध्यान है। उपाय विचय कि मुक्ति का मार्ग क्या है, और अपाय विचय कि संसार का मार्ग क्या है। तो संबंध में ज्ञान कार्य तो मित्र से मित्र ज्ञान कार्य का स्वरूप विचार करना, सोचना, चिंतन करना, अध्ययन करना, ये सब उपाय विचय है। फिर विपाक विचय पूरी कर्म फलोसफी, कौन से कर्म का उदय कहाँ कैसा होता है, कहाँ बंद होता है, कहाँ सत्ता होती है, सारा ये विपाक विचय। और ये लोक का आकार प्रकार भूगोल, ये संस्थान विचय। अरे तो सब इसमें लिखा है, ये सब स्वभाव रूप है, इसे तो पुण्य का बंद होता है। अब क्या रह गया कि वो जो निश्चय धर्म ध्यान है, जो वो चौथे गुणस्थान में आत्मानुभूति होती है, और वो छठवें गुणस्थान तक और सातवें के भाग तक जो भी आत्मसन्मुख परिणाम होता है, वो निश्चय धर्म ध्यान है। अब ध्यान, अब उस ध्यान की बात करते हैं तो उस ध्यान में उसे तो कोई बताता ही नहीं है कि कोई ध्यान त्यागने योग्य भी है। देखो धर्म ध्यान में वो आधा धर्म ध्यान करने योग्य है, और ढाई ध्यान ढाई माने हाथ और रौद्र तो ध्यान त्यागने योग्य है, और ये भी धर्म ध्यान भी विकल्पात्मक है, समझे ना, ये शास्त्रों के अध्ययन रूप है। तो ये तो स्वाध्याय ही है, यदि ये धर्म ध्यान है तो अपन सब धर्म ध्यान कर रहे हैं। स्वाध्याय के पांच भेद है ना, मातना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमना है, तो ये धर्म ध्यान ही तो चल रहा है। ये क्यों क्या चल रहा है, व्यवहार से धर्म ध्यान और निश्चय से धर्म ध्यान, वो सामायिक हो जाएगी अपनी, सामायिक करेंगे तो ये जो ध्यान आया तो लोग त्यागने लायक है, इस ध्यान की कोई बातें ही नहीं करता, इनको समझाने की जरूरत ही नहीं समझती। जब उमा स्वामी ने 18 सूत्र लिखे हैं तो बहुत बड़ा हिस्सा तो इनके इनमें खपाया है, और वो जो शुक्ल ध्यान है वो कर्णवाणी योग से उनका वर्णन होता है, और बहुत स्पष्ट अपने समझ में नहीं आते हैं, और बाकी तो जब समझते ही जितना शास्त्रों में है तो उसको अध्ययन करके, लेकिन अभी वो होते ही नहीं ना, जितना आगम में लिखा है समझ में आ रहे वो पर्याप्त है। अब जो हो रहे हैं उनकी बात करो ना, तो स्वाध्याय करो, ये कोई कहता ही नहीं है। जिसका ध्यान करना है उस आत्मा को जानो, कोई बात ही नहीं है, नाक का ध्यान करो तो नाक का ध्यान होगा, अगर आत्मा का ध्यान कैसे होगा, वो जो स्वरूप है क्या ध्यान कब। ध्यान बहुत परम पवित्र शब्द है, और कब होता है, होता है हमारे तो ये धर्म ध्यान रूप ध्यान होता है, ये स्वाध्याय रूप कल में ना, और हमें पर अपने सामायिक है ना, सामायिक क्यों नहीं करते, सामायिक मंदिर क्यों नहीं बनाते, सामायिक ही ध्यान है, सामायिक है ना, अपना ग्रस्त के भी है, मुनिराजों के भी है, सामान्य ग्रस्त के भी है, दिन में 2 घड़ी, 4 घड़ी, 6 घड़ी, दिन में 3-3 बार है ना, उसकी बात नहीं। तो वो ध्यान में जो बात आती है, ये जो सारी दुनिया के दिमाग में ध्यान सबसे पागलपन समारोह हो गया है ना, तो बस उसका उसकी मार्केटिंग करनी है, समझे ना। बस तो असली वस्तु स्वरूप क्या है, वो यहां यही कह रहे हैं कि हमने कहा था कि दुधाकरण का व्यापार कराएंगे, और दुधाकरण का व्यापार हमने कराया, और 2 द्रव्यों की पृथक बता दी, और हमने आत्मा को अकर्ता सिद्ध कर दिया, और हमने कह दिया कि दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। क्या तो ऐसी रहे, कौन सी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जीव अजीब नहीं है और अजीब जीव नहीं है, और कहते हैं अतो अकर्ता, जिससे अब अकर्ता सिद्ध हो गया। अरे जीव अजीब नहीं है ये सिद्ध हुआ, अकर्ता कहां हुआ। वो कहते भाई 4 चीजें, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये 4 चीजों का नाम अलग अलग है, इसलिए जीव पर का करता नहीं रहा। अब वो बंद कैसे हो रहा है, ज्ञाना वर्णादि कर्मों का भी, कहते वो कर्म के कर्म का कर्म में हो रहा है, आत्मा में आत्मा, और ये अज्ञान की महिमा है, और इस आत्मा में ये अज्ञान है कि अज्ञान क्या है, बोले वो कैसे दूर करें, अरे भाई अपने आत्मा को नहीं जानना इसका नाम अज्ञान है, और ये मैं हूं ये नहीं जानना इसका नाम अज्ञान है। तो ये मैं हूं ये जानने के पहले उस आत्मा को जानना पड़ेगा ना, जो दृष्टि का विषय है, पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न है, पर उसे जानो और उसमें अपनापन स्थापित करो कि ये ही मैं हूं। तो ये सम्यक ज्ञान हो गया, ये सम्यक दर्शन हो गया, अब ध्यान सम्यक चरित्र का नाम है। तो वो तो चौथे गुण स्थान से बारहवें गुण स्थान तक पूरा होगा, तो बारहवें तक तो अपन अभी जाने, बारहवें तेरहवें तक जो जाने वाले नहीं है, जहां भी जाएंगे, जहां तक जाएंगे वहीं तक तो जाएगा क्यों, तो नंद दिगंबर तो तुम हो नहीं गए, तो मुनि दादों वाला ध्यान तो करा नहीं गए, अब कौन सा करा रहे हो, जो किसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं क्यों, कौन से ध्यान की करा रहे हैं, कि जो चौथे में होगा, जो पांचवें में होगा, जो छठवें में होगा, कि जो पहले में हो, पहले में होता नहीं, पहले में तो पहले आत्मा समझना है। सब बड़े बहुत बहुत मैं तो हमने किया साहब दो महीना किया, हमारा तो बहुत फायदा हो गया, क्या फायदा हुआ तेरे को, हमारा 10 पैसा ठीक हो गया, अरे एक दो गोलियों से ठीक हो जाता 5 रुपये की, 2 महीना में इसे किया, इसके लिए और ध्यान होता है कि देह तेरे देह को किसे बोलते हैं, जेल, जेल बोलते ना तनकाराग्रह, तो तेरी जेल मजबूत हुई है, कि देह से भिन्न भगवान आत्मा को जानकर जो ध्यान देह से छूटने का उपाय था, अब वो ध्यान देह को मजबूत कर रहा है, वो देह ही देह का ध्यान हो रहा है, नाक को देखो, आंख को देखो, यहां देखो, यहां देखो, अभी कहते हैं तो कहता है कि नहीं नहीं, तो यहां जो आत्मा के प्रदेश है ना वे देखेंगे हम, तो इन्हीं प्रदेशों को क्यों देखेगा, इधर उंगली के प्रदेश देख लेना, पैर की अंगूठी के प्रदेश देख लेना, हमने कोई और अंगों के नाम नहीं लेना चाहता हूं हर अंग में प्रदेश है आत्मा के, नहीं नहीं तो दादा महिमा बंद था ना रजनी भाई, अरे नहीं तुम्हें मालूम है कि आत्मा के प्रदेश 24 घंटे ऐसे घूमते रहते हैं, तो यहाँ पैरों के प्रदेश माथे में आ जाते हैं, माथों के पैरे में चले जाते हैं, और सब अंगों में चले जाते हैं बदल बदल करके, समझ गए ना, तो कौन से कहा के पकड़ेगा, तो किसी भी अंग में है तो हर अंग में प्रदेश है ना आत्मा के, अब अखंड प्रदेश चाहिए तुझे कि इतने से प्रदेश जो तेरी एक नाक की नोक में है, कुछ नहीं है, पागलपन है, अरे कहते हैं लोग बुरा लगता है, ये सब आलोचना नहीं है, ये लोग फंस रहे हैं इसमें, उसे बचाना बहुत जरूरी है, ये बात समझाना बहुत जरूरी है, हैं? यदि इसी औपचारिकता में यदि हम फंसे रहेंगे तो ये जगत के लोग इसी तरह फंसाते रहेंगे और जगत को बेवकूफ बनाते रहेंगे, भ्रष्ट क्या है, ये सब चल रहा है, इन दो गाथाओं का तो मुख्यतः हो गया, अभी मैं बाकी की बात फिर करूंगा।